लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित प्रेरितिक आवास की लाइब्रेरी से संत पापा फ्रांसिस ने रविवार 10 जनवरी को प्रभु के बपतिस्मा महापर्व के अवसर पर देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा।
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi festeggiamo il battesimo del Signore.
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज हम प्रभु के बपतिस्मा का पर्व मना रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले हमने बालक येसु को ज्योतिषों द्वारा दर्शन करते हुए छोड़ा था। आज हम उन्हें एक युवक के रूप में यर्दन के किनारे पुनः पा रहे हैं। धर्म विधि ने हमें करीब 30 सालों का छलांग लगवाया है। 30 सालों के बारे हम एक चीज जानते हैं कि वे जीवन के छिपे हुए साल हैं, जिनको येसु ने परिवार में बिताया। कुछ समय पहले मिस्र में हेरोद के अत्याचार के कारण भागकर अप्रवासी के रूप में और बाकी समय नाजरेत में जोसेफ का काम सीखते हुए परिवार में माता पिता का आज्ञा पालन करते हुए अध्ययन एवं काम करते हुए। यह विचित्र है कि प्रभु ने पृथ्वी पर अपने जीवन का अधिकांश भाग सामान्य जीवन को जीते हुए अपने को प्रकट किए बिना इस तरह बिताया। हम सोचते हैं कि सुसमाचार के अनुसार 3 साल का समय उपदेश देने, चमत्कार करने और कई अन्य चीजों को करने का था। संत पापा ने कहा कि सिर्फ 3 साल और बाकी वर्ष अपने परिवार के साथ अप्रकट रूप में था। यह हमारे लिए एक सुंदर संदेश है। यह दैनिक जीवन के महत्व को प्रकट करता है। ईश्वर की नजरों में जीवन के हर पल और हर भाव महत्वपूर्ण है, चाहे वह कितना ही साधारण अथवा छिपा हुआ क्यों ना हो। संत पापा ने गौर किया कि इन 30 सालों के छिपे जीवन के बाद यीशु का सार्वजनिक जीवन शुरू होता है। इसकी शुरुआत यर्दन नदी में बपतिस्मा के द्वारा होती है, किंतु यीशु ईश्वर है, फिर भी क्यों बपतिस्मा लिए। यूहन का बपतिस्मा पश्चाताप की धर्म विधि थी, जो बेहतर के लिए मन परिवर्तन की इच्छा का चिन्ह था, अपने पापों के लिए क्षमा मांगना था। यीशु को निश्चय ही इसकी आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में यूहन बपतिस्ता ने भी इससे टालने की कोशिश की थी, किंतु यीशु ने इस पर जोर दिया। क्यों? क्योंकि वे पापियों के साथ रहना चाहते थे, इसलिए वे उनकी पंक्ति में आए और वही किया जो उन्हें करना था। वे इसे लोगों के मनोभाव से किए, उनके मनोभाव से, जैसा कि धर्म विधि में भजन कहता है, खाली आत्मा और खाली पांव से। खाली आत्मा अर्थात किसी चीज से ढके बिना एक पापी के समान, इसी हाव भाव के साथ यीशु नदी में उतरे, ताकि वे उस स्थिति में अपने को डुबा सकें जिसमें हम हैं। बपतिस्मा का असल अर्थ है डुबकी लगाना। अपने प्रथम दिन के मिशन में यीशु ने अपने कार्यक्रम संबंधी घोषणा जारी की। उन्होंने बतलाया कि वे ऊपर राज के निर्णय या बल प्रदर्शन अथवा आदेश देकर नहीं बचाते हैं, वे हमसे मिलने आकर और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें बचाते हैं। इसी तरह अपने आप को दीन बनाकर, खुद इसकी कीमत चुकाकर ईश्वर दुनिया की बुराई पर जीत पाते हैं। संत पापा ने कहा कि यह एक रास्ता है जिसके द्वारा हम दूसरों को भी ऊपर उठा सकते हैं, उनका न्याय करने, सलाह देने के द्वारा नहीं, बल्कि उनके पड़ोसी बनकर, सहानुभूति रखकर, ईश्वर के प्रेम को बांटकर। सामीप्य हमारे लिए ईश्वर का तरीका है। वे स्वयं मूसा से कहते हैं, सोचो क्या कोई देवता है जो अपने लोगों के इतना करीब है जितना मैं तुम्हारे करीब हूँ। निकटता हमारे साथ ईश्वर का तरीका है। संत पापा ने कहा कि यीशु द्वारा करुणा के इस कार्य के पश्चात एक असाधारण घटना घटती है। स्वर्ग खुल जाता है और पौत्र त्रित्वा में ईश्वर प्रकट होते हैं। पौत्र आत्मा स्वर्ग से एक कपोत के रूप में उतरता है और पिता ईश्वर यीशु से कहते हैं, तू मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। संत पापा ने कहा कि जब करुणा दिखाई पड़ती है तो ईश्वर खुद को प्रकट करते हैं, क्योंकि यही उनका चेहरा है। यीशु पापियों के दास बन जाते हैं और पुत्र घोषित किए जाते, हमारे लिए अपने को झुकाते और पौत्र आत्मा उनमें उतरते हैं। प्रेम ही प्रेम को बुलाता है, यह हम पर भी लागू होता है। हर सेवा कार्य में, हर दया के कार्य में जब हम ईश्वर को प्रकट करते हैं तब वे दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, किंतु हमारे कार्य करने के पहले ही हमारा जीवन दया के चिन्ह से अंकित है और यह हम पर लगाया गया है। हम मुफ्त में बचाए गए हैं, मुक्ति मुफ्त है या ईश्वर के द्वारा मुफ्त में दी गई है। संस्कार रूप में हम इसे बपतिस्मा के दिन प्राप्त करते हैं, किंतु जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है वे भी ईश्वर की दया प्राप्त करते हैं, क्योंकि ईश्वर वहाँ भी उपस्थित हैं, उनके हृदय द्वार खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वे नजदीक आते हैं, बोलने देते, अपनी दया से हमें दुलारते हैं। संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, माता मरियम जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारी बपतिस्मा की पहचान को संजोकर रखने में मदद करे। यही दयालु होने की पहचान है जो विश्वास एवं जीवन के आधार में निहित है। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Dominus, Ave Maria.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने विभिन्न लोगों की याद करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, rivolgo un saluto affettuoso al popolo degli Stati Uniti d'America.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं अमेरिका के लोगों का सास्नेह अभिवादन करता हूँ जो कांग्रेस में पिछले दिनों हुई घेराबंदी से हिल गए हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। उन पांच लोगों ने उत्तेजक पल में अपनी जान गंवा दी। संत पापा ने जोर देकर कहा,
ribadisco che la violenza è autodistruttiva sempre. Nulla si guadagna con la violenza e tanto si perde.
हिंसा हमेशा आत्म विनाशक है। हिंसा से कुछ हासिल नहीं होता और बहुत कुछ खो जाता है। मैं सरकारी अधिकारियों एवं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वे जिम्मेदारी की गहरी भावना को बनाए रखें, ताकि भावनाओं को शांत किया जा सके, राष्ट्रीय मेल मिलाप को बढ़ावा दिया जा सके एवं अमेरिकी समाज के मूल में निहित प्रजातंत्र के मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जा सके। अमेरिका की संरक्षिका अति निष्कलंक माता मरियम मुलाकात की संस्कृति और देखभाल की संस्कृति को जीवित रखने में मदद दे, ताकि सार्वजनिक भलाई के शाही रास्ते का निर्माण किया जा सके। और मैं उस भूमि में रहने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तब संत पापा ने संचार माध्यमों से जुड़े सभी लोगों का अभिवादन करते हुए कहा, अब मैं उन सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ जो संचार माध्यमों द्वारा जुड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं, महामारी के कारण आज मैं सिस्टीन चैपल में परंपरागत बपतिस्मा की धर्म विधि सम्पन्न नहीं कर सका। फिर भी मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया है तथा उनके माता पिता एवं धर्म माता पिता के लिए अपनी प्रार्थना का आश्वासन देता हूँ। उन बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूँ जो बपतिस्मा ग्रहण करेंगे और ख्रिस्ते पहचान प्राप्त करेंगे, क्षमाशीलता एवं मुक्ति की कृपा प्राप्त करेंगे। ईश्वर सभी को आशीष प्रदान करे। संत पापा ने पूजन पद्धति में क्रिसमस काल समाप्त होने एवं सामान्य काल शुरू होने पर विश्वासों को पौत्र आत्मा से संचालित होने हेतु प्रेरित करते हुए कहा,
Non stacchiamoci di invocare la luce e la forza dello Spirito Santo affinché ci aiuti.
हम पौत्र आत्मा के प्रकाश एवं शक्ति का आह्वान करने से न थकें, जिससे कि वे हमें सामान्य चीजों का अनुभव प्रेम से करने और उन्हें असाधारण तरीके से पूरा करने में मदद दें, ताकि हम पवित्र आत्मा के लिए खुले और उदार हो सकें। यदि हम पवित्र आत्मा के लिए खुले और उदार होंगे तो वे हमारे दैनिक विचारों और कार्यों को प्रेरित करेंगे। तब अंत में संत पाप ने प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Auguro a voi tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
आत्मा आओ आओ पवित्र आत्मा
आकर अपना घर बनाओ
आकर अपना घर बनाओ
आओ मेरे दिल में
आओ पवित्र आत्मा
आओ आओ पवित्र आत्मा आत्मा आओ आओ पवित्र आत्मा
दे दे मुझे अपनी शक्ति
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैथोलिक कलीसिया क्रिसमस मौसम को समाप्त कर सामान्य पंचांग में प्रवेश की है। साधारण जीवन में प्रभु की महानता को जीने हेतु संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी क्रिस्तियों को प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, यह कितना अनोखा है कि प्रभु ने अपना अधिकांश समय पृथ्वी पर एक साधारण जीवन बिताया। यह एक सुंदर संदेश है जो दैनिक जीवन की महानता को दर्शाता है। ईश्वर की नज़र में जीवन के हर हाव भाव और यहाँ तक कि सबसे सरल क्षण भी महत्व रखते हैं। और संत पापा फ्रांसिस ने एक मोटू प्रोप्रियो स्वलिखित स्पिरिटुस डोमिनी द्वारा स्थापित किया है कि एक विशिष्ट जनादेश के साथ एक स्थिर और संस्थागत रूप से पाठ पढ़ने और वेदी सेवक मिनिस्ट्री अब से महिलाओं के लिए भी खुले हैं। वे महिलाएं जो पूजन धर्म विधि समारोहों के दौरान ईश्वर के वचन को पढ़ती हैं या वेदी सेवक के रूप में या पवित्र यूखरिस्ट वितरक के रूप में निश्चित रूप से नई नहीं है। दुनिया भर के कई समुदायों में अब धर्माध्यक्षों द्वारा अधिकृत प्रथा बन गई है। अब तक हालांकि यह सब वास्तविक संस्थागत जनादेश के बिना हुआ। हालांकि संत पापा पॉल छठे द्वारा 1972 में इन मिनिस्ट्री की पहुंच को केवल पुरुषों के लिए आरक्षित रखने का निर्णय लिया था। अब संत पापा फ्रांसिस धर्माध्यक्षों के नवीनतम धर्म सभा से निकले विवेक के मद्देनजर इस मिनिस्ट्री में वेदी पर महिला की उपस्थिति को संस्थागत बनाना चाहते हैं। संत पापा फ्रांसिस मोटू प्रोप्रियो द्वारा कलीसिया की कानून संहिता 230 के पहले अनुच्छेद को संशोधित कर स्थापित करते हैं कि महिलाएं इन मिनिस्ट्री में अपना सहयोग दे सकती हैं और उन्हें एक संस्थागत अधिनियम के माध्यम से जिम्मेदार ठहराया जाता है जो उन्हें संस्थागत बनाता है। संत पापा फ्रांसिस निर्दिष्ट करते हैं कि वे विभिन्न धर्म सभाओं से निकली सिफारिशों को स्वीकार करना चाहते हैं। हाल के वर्षों में हम एक सैद्धांतिक विकास तक पहुंच गए हैं जिसने इस बात को उजागर किया है कि कलीसिया द्वारा स्थापित कुछ मिनिस्ट्री बपतिस्मा संस्कार प्राप्त लोक धर्मी के पुरोहिताई की सामान्य स्थिति की नींव है। इसलिए संत पापा हमें यह मानने के लिए आमंत्रित करते हैं कि ये मिनिस्ट्री पुरोहिताभिषेक संस्कार से प्राप्त होने वाली मिनिस्ट्री से अनिवार्य रूप से अलग है। संत पापा ने अपने पत्र में विश्वास एवं धर्म सिद्धांत के लिए बनी धर्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल लुइस लदारिया को संबोधित करते हुए उन्हें अपनी पसंद की धार्मिक कारणों की व्याख्या करते हुए दूसरी वाटिकन सभा द्वारा किए गए नए सिरे से जोड़ने और कलीसिया में सभी बपतिस्मा लेने वाले वालों की सहजिम्मेदारी और विशेष रूप से लोक धर्मियों के मिशन को फिर से परिभाषित करने हेतु आग्रह किया। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल लदारिया को लिखे पत्र में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के शब्दों को याद कराया कि पुरोहिताभिषेक के संबंध में कलीसिया के पास किसी भी तरह से महिलाओं के पुरोहित अभिषेक स्थापित करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा कि अभिषेक मिनिस्ट्री से बाहर लोकधर्मी महिलाओं की मिनिस्ट्री आज अपने आरक्षण को पार कर गई है। संत पापा फ्रांसिस ने महामारी के कारण होने वाले वैश्विक संकट को दूर करने के लिए भाइयों और बहनों की तरह महसूस करने के लिए हमारी सामान्य एकता को पुनः प्राप्त करने के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं। रविवार शाम को प्रसारित चैनल 5 के साथ साक्षात्कार की शुरुआत में संत पापा फ्रांसिस ने दोहराया कि एक संकट के बाद हम पहले जैसे नहीं रह जाते हैं। हम या तो बेहतर बनकर बाहर निकलते हैं या हम बदतर बन जाते हैं। संत पापा के अनुसार किसी को हर चीज की समीक्षा करनी चाहिए। जीवन में हमेशा जो महान मूल्य होते हैं उनका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ना चाहिए। संत पापा ने नाटकीय परिस्थितियों की एक श्रृंखला को प्रस्तुत किया जो उन बच्चों से लेकर जो भूखे हैं और स्कूल नहीं जा सकते, वे युद्ध जो ग्रह के कई क्षेत्रों को परेशान करते हैं, यह देखते हुए कि इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े भयावह हैं, वे चेतावनी देते हैं अगर हम इन चीजों पर ध्यान दिए बिना संकट से बाहर निकलते हैं तो एक और हार होगी। बच्चे और युद्ध, इन दो समस्याओं को देखते हुए अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो यह और भी बुरा होगा। चैनल 5 के पत्रकार फाबियो मार्चेस के कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के बारे में एक सवाल के जवाब में संत पापा कहते हैं, मेरा मानना है कि नैतिक रूप से सभी को वैक्सीन लेना चाहिए। यह एक विकल्प नहीं है, यह एक नैतिक कार्यवाही है, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं, आप अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आप दूसरों के जीवन के साथ भी खेल रहे हैं। संत पापा कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में वाटिकन में टीकाकरण शुरू हो जाएगा और उन्होंने इसके लिए खुद को बुक कर लिया है। हाँ, यह किया जाना चाहिए, वे जोर देते हुए कहते हैं। अगर डॉक्टर कहते हैं कि टीका सुरक्षित है और इससे किसी को विशेष खतरा नहीं है तो इन्हें इसे लेना चाहिए। संत पापा ने कहा, इसमें आत्मघाती इनकार मौजूद है, मैं समझ नहीं सकता, या तो हम एक साथ बचेंगे या कोई नहीं बचेगा। उधर कोविड-19 संक्रमण में तेजी से वृद्धि के कारण यूनाइटेड किंगडम में एक तीसरा लॉकडाउन हुआ, जहां इंग्लैंड और वेल्स में गिरजाघर को खुला रखने का निर्णय लिया गया और स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में गिरजाघर बंद रहेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा नए राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान पूजा स्थलों को बंद नहीं करने का निर्णय इस मान्यता पर आधारित है कि देश में गिरजाघर सुरक्षित है और वे जो सेवा प्रदान करते हैं वह आवश्यक है। यह बात ब्रिटिश गिरजाघर के एक अधिकारी ने कही। ब्रिटेन 5 जनवरी से अपने तीसरे राष्ट्रीय लॉकडाउन में प्रवेश किया। हालांकि इस बार इंग्लैंड और वेल्स के गिरजाघरों को प्रार्थना और पवित्र मिसा पूजा के लिए खुले रखने की अनुमति दी गई है। उन्हें बंद करने के लिए कई स्थानीय अधिकारियों के दबाव के बावजूद स्कॉटिश प्रथम मंत्री के फैसले के अनुसार गिरजाघरों को खुला रखा गया है। गिरजाघरों में प्रार्थना कर लोग व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयों का सामना करने की आंतरिक शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसकी इस समय बहुत आवश्यकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें आर्थिक सहायता मिलती है, जिसमें भोजन का नियमित प्रावधान शामिल है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।